Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paramatma ki aur sant mahapurushon ki asim kripa se hum log विचार प्रारंभ किए हैं। कृष्णायजुर्वेदीय कठोपनिषद के विषय में, जैसे श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त मान करके समस्त मुमुक्षुओं के लिए उपदेश किया, इसी प्रकार आचार्य जमराज नचिकेता को निमित्त मान करके समस्त मुमुक्षुओं के लिए उपदेश किया। जब तीन बार मांगने का अवसर आया नचिकेता के पास, तो सर्वप्रथम कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर के पितृ संतोष के रूप से प्रथम बार मांगा। जब साधक के जीवन में कर्तव्य की प्रधानता होती है तो कामना गौण हो जाती है, और जब कामना की प्रधानता होती है कर्तव्य गौण होता है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कोई विद्यालय का अध्यापक हो, वह अध्यापन करता है, तनख्वाह तो मिलता है, तनख्वाह मिलने पर भी यदि उनके अंतकरण में कर्तव्य की प्रधानता हो, मेरा कर्तव्य है शिक्षा देना, तो धन के प्रति आसक्ति उनके नहीं होती है। तो कर्तव्य से प्रेरित होकर के यदि शिक्षक अध्यापन करता हो, उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से नचिकेता कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर के पितृ संतोष को मांगा प्रथम वर्ग के रूप से, और सोचता है पिता यदि मुझे नहीं भेजे होते जमराज के पास तो ऐसा अवसर मुझे प्राप्त न हुआ होता। यही साधक का साधकत्व है, अपने में दोष को देखता है, दूसरे का दोष को नहीं देखता है। और फिर प्रथम बार मांगने के बाद और दो बार शेष रह गए, फिर दो बारों में से द्वितीय बार को क्या मांगना चाहिए। तो नचिकेता का अंतकरण शुद्ध था, को विचार करता है कि संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक संसार का परीक्षण करने वाले और दूसरे संसार का परीक्षण न करने वाले। जो संसार का परीक्षण नहीं करता है संसार से वास्तविक सुख शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि परीक्षा ना करे तो संसार से ठगा जाएगा, माया से, माइक पदार्थ से ठगा जाएगा। तो संसार अनित्य में नित्यत्व बुद्धि हो जाती है, मिथ्या में सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। सत्यत्व बुद्धि होने पर ही संसार में आसक्त होता है, संसार में सुख को देखता है। तो ऐसा व्यक्ति अभ्युदय चाहता है, तो ऐसे संसार के परीक्षा न करने वालों व्यक्ति के लिए नचिकेता ने अग्नि विद्या को मांगा। यह द्वितीय वर हुआ और तीसरा वर मांगने का जब अवसर आया तो ब्रह्म विद्या को मांगा उन्होंने। तो जिसने संसार का परीक्षण कर लिया और परीक्षण करने के बाद ही निश्चय होता है, इसलिए आप लोग जानते हैं मुंडक श्रुति में, मुंडकीय श्रुति कहती है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात। तो निर्वेद शब्दित वैराग्य को प्राप्त करता है ब्राह्मण, ब्राह्मण उपलक्षित कोई भी साधक हो। साधक में प्रधानता ब्राह्मण की होती है, इसलिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करती है। तो ब्राह्मण उपलक्षित सभी साधक को परीक्षण करने के बाद वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य हुआ क्यों? इसलिए वैराग्य हो गया कि निश्चात्मिका बुद्धि हो गई कि नास्ति अकृतः कृतेन। अकृत जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, परमानंद की नित्य अनुभूति, उसकी प्राप्ति अकृत शब्द शब्दित संसार अनित्य पदार्थ के द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अग्नि विद्या साधन नहीं है। अग्नि विद्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, उसके साथ उपासना करे, कर्मों के साथ साथ ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन अग्नि विद्या की प्राप्ति मात्र से परम पुरुषार्थ शब्दित मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए ब्रह्म विद्या को मांगा तृतीय वर के रूप से। जमराज जी जानते हैं, जमराज जी सर्वज्ञ हैं। तो नचिकेता साधक है कि साधक नहीं है, जमराज जी को ज्ञात था कि नहीं? ज्ञात था। फिर भी जो भावी जो साधक होने वाले हैं आगे, उनको उद्देश्य करके, ध्यान में रख करके नचिकेता के लिए परीक्षण किया कि जिस बुद्धि में ब्रह्म विद्या रूपी अमृत को स्थापित करना है, वह बुद्धि रूपी घड़ा, जिस घड़े में अमृत को रखना है ब्रह्म विद्या रूपी, वो बुद्धि रूपी घड़ा ठीक है कि ठीक नहीं है? उसमें कोई छिद्र तो नहीं है? छिद्र यदि हो तो ब्रह्म विद्या रूपी अमृत चरित हो जाएगा। किसी भी यह लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु में यदि आसक्ति हो, यह सुख का साधन हो, ऐसी यदि भ्रांति हो तो उसकी बुद्धि परिचिन्नाकार होगी, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो सकती है। यदि ब्रह्माकार वृत्ति होगी तो विशिष्ट ब्रह्म की वृत्ति होगी, निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्ति आसक्त चित्त बुद्धि में अंतकरण में नहीं हो सकती है। तो ये बात बतानी है भावी साधक के लिए। इसलिए जमराज ने विचार किया कि बुद्धि रूपी घड़े को थोड़ा सा ठोक पीट करके देख लें, जिससे कि ब्रह्म विद्या रूपी अमृत रह सके। साधक में जो साधकत्व नहीं है, ब्रह्म विद्या को धारण करने की यदि सामर्थ्य शक्ति ना हो, ब्रह्म विद्या तो आ सकती है, परोक्ष ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। और परोक्ष ज्ञान मात्र से अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? परोक्ष ज्ञान से निवृत्ति होती है परोक्ष भ्रम की, होगी अपरोक्ष भ्रम की नहीं हो सकती है। जैसे कि अपने अपने संस्कार को लेकर के, अपनी अपनी दृष्टि को लेकर के, संसार में दृष्टि का ही भेद है, दृष्टि का ही खेल है। जैसे मान लो कोई शरीर है, कोई माता का शरीर है, वो सबके लिए समान नहीं दिखता है, तो पति के लिए क्या दिखे देगी, पत्नी दिखे देगी, और पुत्र के लिए मां दिखे देगी, और कोई बाघ आ जाए तो उसको भोजन दिखे देगा, और कोई मान लीजिए योगी आ जावे, हाड़ मांस का पुंज दिखे देगा, और ब्रह्म ज्ञानी आ जाए तो सार्वम खलुइदम ब्रह्म दिखाई देगा, ब्रह्म ही दिखाई देगा। तो आप विचार कर लो उसका स्वरूप क्या है, एक दृष्टि है। इसलिए जैसी दृष्टि होती है संसार ऐसा ही दिखाई देता है। तो रस्सी में किसी को अपने दृष्टि के आधार पर, संस्कार के आधार पर सर्प दिखाई देगा, किसी को माला भी दिखाई देगी, किसी को भूछिद्र भी दिखाई देगा, महात्मा हो तो डंडा भी दिखाई देगा, दंडी महात्मा हो तो। तो ये जो सर्पादि दिखाई दे रहे हैं, ये परोक्ष है कि अपरोक्ष है? अपरोक्ष प्रत्यक्ष है। ये जो भ्रम हो रहा है सर्पादि का भ्रम अपनी अपनी दृष्टि के आधार पर, ये अपरोक्ष है। और अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति, अपरोक्ष संसार की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान मात्र से नहीं होती है। किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं ये रस्सी है, सर्प नहीं है, उतने मात्र से आपकी बुद्धि नहीं मानती है। जब तक पास में जाकर के प्रकाश से नहीं देख लेते, तब तक भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार यहां पर कि सर्वम खलुइदम ब्रह्म, ऐसा ज्ञान होने मात्र से संसार की निवृत्ति, भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए साधक को अपरोक्ष ज्ञान कराना है, जमराज ये सोचते हैं, परोक्ष ज्ञान मात्र नहीं कराना है। तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए बुद्धि भी ऐसी होनी चाहिए, किसी भी वस्तु में आसक्ति ना हो, जिसको साधन चतुष्ट संपत्ति बोलते हैं। इसलिए साधन चतुष्ट संपत्ति हो तब जाकर के अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो यद्यपि जमरादि जानते हैं कि नचिकेता उत्तम अधिकारी है, परंतु आगे कोई भावी साधक को यह भ्रांति न हो कि हम भी ज्ञान के अधिकारी हैं, संसार में आसक्ति भी हो, यह लौकिक पारलौकिक सुख की इच्छा भी हो और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए जमराज ये सोचते हैं कि इसको निमित्त मान करके भावी साधक को ये उपदेश देना है कि तुमको बुद्धि में सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए उसने बहुत प्रकार के प्रलोभन दिया, यह लौकिक सुख पारलौकिक सुख। तो किसी भी सुख के साधन में प्रलोभित नहीं हुआ, आसक्त नहीं हुआ नचिकेता। तब जाकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया प्रथम अध्याय में कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, इस संक्षेप रूप से आत्मा का उपदेश दिया। और ये जो अविद्या है अनादि, इसकी निवृत्ति करनी है। इसमें किसी प्रकार का प्रमाद ना हो, इसलिए पीछे बता दिया कि उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्य निबोधत। इसलिए अनादि माया में तुम सोते नहीं रहना है, इससे उठना है। और ये भी बता दिया कि हमारी बुद्धि बहुत तीव्र है, बुद्धिमान है हम, तो ऐसे ही पढ़ करके ज्ञान को प्राप्त कर ले। कहते ऐसी नहीं, भ्रांति नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्राप्य वरान निबोधत, क्योंकि बात ऐसी होती है जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखती है वो वस्तु ऐसी ही है, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण नहीं माना जाता है सनातन परंपरा में, कि पृथ्वी घूमती है ये वैज्ञान लोग कहते हैं, लेकिन दिख तो नहीं है पृथ्वी घूम रही है, फिर भी आप मानते हैं कि नहीं पृथ्वी घूमती है। तो इसमें प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। वैज्ञानिकों ने विचार किया भाई चंद्रमा छोटी दिखती है, तो चंद्रमा जितना दिख रही है, जितना आकार है, ऐसा है ही नहीं। सूर्य छोटा सा दिखता है, लेकिन एक सूर्य में हजारों पृथ्वी समा जाएगी। इसी प्रकार आत्मा अपने आप को जैसा मान रहा है अभी प्रत्यक्ष, अपने आप को 3.5 हाथ मान रहा है, शरीर को आत्मा मान रहा है, लेकिन यह शरीर आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए जमराज जी कहते हैं शास्त्र के द्वारा ज्ञान तो होता है, केवल अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं। इसलिए बरान जो है, गुरु के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इस आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान यदि प्राप्त करना हो, वास्तविक ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान को प्राप्त करना हो, तीनों का एकत्र होना चाहिए। शास्त्र का उपदेश, गुरु का अनुभव और तत् अनुसार अपना अनुभव, तीनों यदि एक हो जावे तो समझना चाहिए कि अपना ज्ञान सही है, शास्त्र जैसा कह रहा है, गुरु का उपदेश भी ऐसा होना चाहिए। शास्त्र कुछ अलग कह रहा है, गुरु कुछ अलग कह रहा हो, या फिर अपना अनुभव कुछ अलग कह रहा हो, तब तो ज्ञान नहीं होगा, उसको प्रामाणिक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। इसलिए शास्त्र का उपदेश, तत् अनुसार गुरु का उपदेश, और तत् अनुसार अपना अनुभव हो, तब ज्ञान प्रामाणिक होता है। तो ऐसे ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रथम अध्याय में बता दिया कि प्राप्य वरान निबोधत, और यह जो परमात्मा है जिसको प्राप्त करना चाहता है साधक, वह परमात्मा कण कण में छुपा है। इसलिए सर्वम खलिदम ब्रह्म कहा। जैसे पर्दे में चित्र दिखता है, चलचित्र के पर्दे में चाहे चित्र गणेश का चित्र हो, चाहे उनके वाहन का चित्र हो, चाहे राम का चित्र हो, चाहे रावण का चित्र हो, सभी चित्र में एक पर्दा ही अनुसूत है। जैसे चीनी से बनी हुई गणेश की मूर्ति हो, चाहे चूहे की मूर्ति हो, चाहे देवता की मूर्ति हो, चाहे राक्षस की मूर्ति हो, सभी में एक चीनी ही अनुसूत है। इसी प्रकार दृष्टांत में चाहे जागृत का पदार्थ हो, चाहे स्वप्न का पदार्थ हो, चाहे सुसुप्ति का पदार्थ हो, और जागृत में भी चाहे सात्विक पदार्थ हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, सभी पदार्थों में एक परमात्मा ही अनुसूत है। यदि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रथम अध्याय में बता दिया परमात्मा यद्यपि सर्वत्र अनुसूत है, लेकिन छुप गया है वो। तो छुपाने वाले कौन है? माया है। इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। योग जो माया है, इसके कारण परमात्मा छुप गया है, इसलिए दर्शन नहीं होता है। परमात्मा का दर्शन तो होता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो रस्सी में सर्प दिखता है, तो रस्सी दिखती कि नहीं दिखती है? क्यों भाई, नहीं दिखती है? रस्सी दिखती है, नहीं दिखती ऐसी बात नहीं है, सच में ना? रस्सी यदि ना दिखे तो सर्प नहीं दिखेगा, पकड़ में है कि नहीं? जैसे मान लो कि प्रकाश यदि ना दिखे तो पुस्तक नहीं दिखे देगी, हो गया ना भाई? इसी प्रकार से पर्दा भी दिखाई देती है, पर्दा ना दिखे तो चित्र दिखाई नहीं देगा। तो सर्प का जो अधिष्ठान है इदम अंश, यह अंश सर्प है बोलते ना, है जो है यही अधिष्ठान है, आधार है जो सत्ता दे रहा है, वो यदि दिखाई ना देवे, सर्प ही दिखाई नहीं देगा आपको, है ना? तो इसी प्रकार से सत अंश में जैसा है, इसी प्रकार चेतन अंश में भी ऐसा है। चेतन का भान यदि ना हो तो जड़ का भान नहीं होगा, आत्मा का भान यदि ना हो तो अनात्मा का भान नहीं होगा। तो सत अंश भी दिखाई देता है सामान्य रूप से, और चित अंश भी दिखाई देता है सामान्य रूप से। पंचदशी आप लोग सुनते हैं, इसी प्रकार आनंद अंश का भी मालूम पड़ता है। आत्मा आनंद रूप है, ऐसा यदि सामान्य रूप से भान न हो तो आत्मा के प्रति प्रीति क्यों होगी? फिर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा प्रीति आत्मा से होती है। यदि आपको यह ज्ञान न हो कि आत्मा आनंद रूप है, फिर आत्मा से प्रीति क्यों होगी? इसलिए पंचदशीकार कहते हैं कि अभाने न परम प्रेम, आत्मा का यदि भान न हो आनंद अंश का, तो आत्मा के प्रति प्रीति नहीं होती है। लेकिन विशेष रूप से भान नहीं होता है, मेरा स्वरूप ही आनंद है, जगत में आनंद है ही नहीं, ये विशेष ज्ञान हो गया। ऐसा विशेष ज्ञान नहीं होता है। यदि विशेष ज्ञान ऐसा होता कि मेरे में ही आनंद वास्तविक है, संसार में आनंद नहीं है, ऐसा यदि ज्ञान होता तो विषय में इच्छा नहीं होती। फिर इसलिए भाने न विषयस प्रिया, पंचदशी में सुनते आप, आत्मा के वास्तविक स्वरूप आनंद की अनुभूति हो जावे विशेष रूप से, तो फिर संसार में भटकना नहीं पड़ता। फिर तो आत्मा के सत्व अंश का विभान होता है सामान्य रूप से, चिंत अंश का विभान होता है, आनंद अंश का विभान होता है, लेकिन विशेष रूप से अनुभूति नहीं होती है। तो अनुभूति न होने में प्रतिबंधक है माया। इसलिए प्रथम अध्याय में नचिकेता के लिए बताते हैं कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, ये बता दिया। और उस माया को निवर्तन करने के लिए, हटाने के लिए प्रतिबंधक को एकाग्र बुद्धि होनी चाहिए। स्थिर बुद्धि के बिना, एकाग्र बुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होता है, श्रवण आदि का अधिकारी नहीं बन सकता है। इसलिए प्रथम अध्याय बता दिया कि दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, ये बता दिया। एकाग्र बुद्धि के बिना, स्थिर बुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होता है, ये बात तो ठीक है, इतना मान लिया। लेकिन ये जो प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक दो प्रकार के हैं। यहां पर आनंदगिरी महाराज लिखते हैं, अनादिर अविद्या प्रतिबंध प्राक उक्त। प्रतिबंधक मतलब क्या? कारण हो और कार्य न हो, जिससे जिस वस्तु से कारण होने पर भी कार्य न होता हो, उसी का नाम है प्रतिबंधक। कारण सामर्थ्य विकटकत्वम, कारण के सामर्थ्य को रोकना, इसी का नाम है प्रतिबंधक। तो ये अनादि जो माया है, ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक है, ये बात तो ठीक है। ये अनादि है, अनादि काल से ये माया है, और परमात्मा का स्वभाव है। हाँ जी, इसी का नाम तो अनादि है। सबको अनुभूति हो रही, देखिए आप ब्रह्म को जानते हैं तो आप क्या बोलेंगे? ब्रह्म को नहीं जानते, कब से नहीं जानते हैं भाई? अनादि काल से नहीं जान रहे हैं, है ना? इसी का नाम है अनादि। ऐसा अनुभव हो रहा है सबको, तो अनुभव हो रहा है इसमें प्रश्न नहीं होता है। जिसका जो स्वभाव है उसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए, हैं भाई, संसार में कोई भी द्रव्य उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है, आप बोले अग्नि गर्म क्यों होती है? अग्नि इसलिए गर्म होती है कि अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है ना भाई। संसार में कोई पदार्थ ठंडा नहीं है, बर्फ क्यों ठंडा होता है? आप क्या उत्तर देंगे? उसका स्वभाव ही है कि नहीं? इसी प्रकार माया का स्वभाव ही ऐसा है। तो माया जिसमें रहेगी उसी को ही ढक देगी, उसका स्वभाव ही ऐसा है ना। इसलिए नया लोग तर्क करते हैं भाई, आत्मा तो चेतन है, माया तो जड़ है, अचेतन है, अचेतन का संबंध चेतन के साथ कैसे होगा भाई? ये तर्क करते हैं। तो तर्क करने मात्र से आधार नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव ऐसा है भाई। आप तार्किक लोग जैसे आप मानते हैं ना भाई, संसार में कोई पदार्थ गर्म नहीं, अग्नि क्यों गर्म होता है प्रश्न नहीं कर सकते आप, हो गया ना। इसी प्रकार आत्मा चेतन होने पर भी, माया जड़ होने पर भी, चेतन में ही अचेतन रहेगा, अन्यत्र नहीं रह सकता ना। अन्यत्र इसलिए नहीं रह सकता है माया अविद्या, भाई जड़ में यदि रहे तो प्रकाशित किससे होगी,